मिनिस्ट्री चाहिए होती है तो वो दावे बड़े बड़े करते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। रसूलों को कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए होता, कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए होती, कोई मुकाम नहीं चाहिए होता, वो जैसे होते हैं वो उसी की प्रीचिंग करते हैं। वहुम मुहतदून का मतलब ये है कि उनके कौल और फेल में कोई तजाद नहीं होता, वो जिस चीज की दावत देते हैं वो उसी ट्रूथ और जस्टिस को अपने घरों की चार दीवारी में और अपनी जात में कायम करने वाले होते हैं, इसलिए कि उनका मैसेज प्योर होता है। वही हुक्म जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू में दिया गया था वो वहुम मुहतदून से कनेक्ट हो रहा है, इन्ना का लामिनल मुरसलीन, और मुरसलीन का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, अला सिरात मुस्तकीम। यहां रसूलों की बात आई, इत्तबिउल मुरसलीन, और उनकी सिफत क्या आई, वहुम मुहतदून, ये हिदायत याफ्ता होते हैं, सिराते मुस्तकीम पर होते हैं। आपको कॉन्स्टेंट सूरत यासीन के अंदर कुरान का मोहकम होना, कुरान का वेल निटेड होना, एम्बेडेड होना एक दूसरे के साथ नजर आता है। आगे आयत नंबर 22 में आ रहा है, उसी शख्स का, उसी रजुल का अभी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू हो रहा है। वह माली ला अबुदुल्लदी फतरानी व इलैही तुरजाउन। इस शख्स ने कहा, इस रजुल ने कहा, जिसका नाम आप और मैं नहीं जानते, उसने कहा कैसे मुमकिन है, क्या है मेरे लिए कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया। व इलैही तुरजाउन, जबकि उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। व माली, ये अंदाज है अरबी जुबान में कि जिसमें आप यूं समझें कि इससे किसी ने कोई सवाल किया, यकीनन कौम ने इससे सवाल किया होगा कि तुम क्यों अपने बाप दादा के दीन को छोड़ रहे हो, जिसमें इसने ये जवाब दिया, व माली ला अबुदुल्लदी फतरानी, मैं क्यों ना उसकी इबादत करूं जिसने मुझे पैदा किया है। व माली का अंदाज आपको ये बता रहा है इब्ने आशूर के मुताबिक कि जो मुशरिक कौम ने इस शख्स को सवाल किया था, वो सवाल तो मेंशन नहीं किया गया कुरान में, फिल इन दी ब्लैंक्स है ना किस्से में, लेकिन इस शख्स के, इस रजुल के जवाब ने आपको आइडिया दे दिया कि उन्होंने क्या सवाल किया होगा। उन्होंने कहा होगा कि तुम अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़कर अब नई नई तौहीद की बातें करने शुरू हो गए हो, जिस पर उसने जवाब दिया कि मैं क्यों ना उस एक अल्लाह की इबादत करूं, उस जात की इबादत करूं जिसने मुझे पैदा किया है। यह है बगैर सवाल मेंशन किए हुए सामने वाले के जवाब को ऐसे बयान करना कि सवाल भी वाजे हो जाए। वह इलैही ही तुरजाउन, पहले उसने बात क्या की, व मा ली, ली मुझे क्या है, मेरे साथ क्या मसला है, ला आबुदू कि मैं इबादत ना करूं, दोनों फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है, अना में बात कर रहा है, मुझे क्या इश्यू है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, फर्स्ट पर्सन की बात आ रही है। और आयत मुकम्मल कैसे हो रही है, वह इलैही और उसी की तरफ तुर जाऊन, तुम सब लौटाए जाओगे। मैं से बात तुम पर चली गई, फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन पर चली गई। ये क्या है अंदाज, ये अंदाज होता है एक सेंसिबल मुबल्लिग का, जो मैं तबलीग कर रहा हूं वो पहले मेरे लिए है, बाद में आपके लिए है। पहले अपना जिक्र किया, बाद में उन सबको एड्रेस कर लिया। तो हमेशा याद रखें, जब नसीहत करें तो अपनी कमजोरी को भी सामने रख लें, हम कहकर बात करें, इसलिए कि यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है, आई प्लस यू विल बी इक्वल टू वी, यही कॉन्सेप्ट बनता है ना, मैं ये गलती क्यों करूं और हम और तुमको भी अल्लाह की तरफ पलटना है, सो आई प्लस यू विल बी इक्वल टू वी। यह है तबलीग का अंदाज। जिन लोगों को आप दीन की तरफ लाना चाहती हैं, आप उनके लिए कभी भी जजिंग स्पीच नहीं देते, आप उनकी पेस पर आकर बात करते हैं, बिल्कुल जैसे हमदर्दी वाले अंदाज में इस शख्स ने बात की। आपको इसकी हमदर्दी के कई लेवल नजर आ रहे हैं, यस आ, इसका दौड़ते हुए आना, इसकी आउट ऑफ मोहब्बत और आउट ऑफ रहमा की निशानी नजर आ रहा है। इसने देर नहीं की कि मेरी कौम गफलत में, मैं फौरन पैगाम पहुंचाऊं। इस शख्स का या कौमी कहना ए मेरी कौम, इसके हमदर्दी के एक और लेवल को वाजे कर रहा है। इस शख्स का वमा लीला आबुदू कहना कि क्यों ना मैं ऐसे जात की इबादत करूं जिसने मुझे पैदा किया है, यह भी इसका कौम के साथ एक मोहब्बत के अंदाज को वाजे कर रहा है। आगे फरमाया आयत नंबर 23 में, 23 में इसी शख्स की गुफ्तगू को कंटिन्यू किया जा रहा है। अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा इन युरिदनिर रहमानु बिदुर्रिन ला तुग्नि अन्नी शफाअतुहुम शैआ वला युन्किज़ून, क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी और खुदा की तरफ भागूं, अगर रहमान कोई भी नुकसान देना चाहे, यानी अगर अल्लाह कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा फैसला कर ले, तो उन सब की मदद, उन सब की शिफात किसी काम नहीं आएगी और ना ये मुझे मुश्किल से बचा सकेंगे। इस कॉन्सेप्ट को जो इस रजुल ने आज से कई हजार साल पहले मेंशन किया, इसको आज हर मुसलमान को समझने की जरूरत है कि जब तक अल्लाह की मदद आती है बंदे को नुकसान नहीं पहुंचता। और अल्लाह की मदद कब आती है? अल्लाह की मदद आती है जो इस मैसेज को समझकर पढ़ता है, जो इस मैसेज को अअत्तखिज़ु क्या मैं बना लूं मिन दूनिही आलिहा इन युरिदना रहमान बिदुर्रिन ला तुग्नि अन्नी शफाअतुहुम। ये डिटेल उसको समझ आएगी जो कुरान पर तदब्बुर करेगा, जो कुरान पर रिफ्लेक्शन करेगा कि मुझे जिंदगी में कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि मेरा अल्लाह ना चाहे। मुसलमान का कॉन्सेप्ट वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, तुम अल्लाह के अलावा कहां कोई पनाहगाह हासिल कर सकते हो। इस चीज को समझें, कुरान आपको और मुझे फायदा देगा। एक होती है कुरान की बरकत। वो बरकत क्या है कि आपको अजर मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा जब आप इसके अल्फाज को जितनी मर्तबा भी पढ़ेंगे। आपने एक लफ्ज पढ़ा, बास स्कॉलर्स तो यहां तक कहते हैं, बास स्कॉलर्स कहते हैं कि आपने अलिफ लाम मीम पढ़ा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अलिफ लाम मीम में तो हदीस के मुताबिक आपको अलिफ के 10 रिवॉर्ड, लाम के 10 रिवॉर्ड और मीम के 10 रिवॉर्ड मिल गए। जिस शख्स ने ज़ालिकल किताबु ला रैब फी ही पढ़ा, उसको इसका मतलब नहीं भी आता तो भी उसको बरकत तो कुछ ना कुछ मिल जाएगी। हो सकता है उसको हर लेटर पर 10 का नंबर रिवॉर्ड में ना मिल सके, 10 नेकियां ना मिल सके। क्यों? इसलिए कि कुरान आया है फहम के लिए, विकरा के लिए, समझ के लिए, वसीयत के लिए, नसीहत के लिए। जो बगैर सोचे समझे पड़ेगा कुछ ना कुछ अजर तो मिलेगा, कुछ ना कुछ बरकत तो उसको मिलेगी। लेकिन जो इसका असल एसेंस था कि ये तुम्हारी प्रोटेक्शन बनेगा, शायद ये उस शख्स को हासिल नहीं हो सकेगी। आज हमारे माशरे में कुरान का पहला लेवल रह गया बरकत समेटने वाला, और जो हिदायत समेटने वाला एंगल था, जो जिक्रा और वसीयत और नसीहत से आता है, वो कहीं खो गया। जब वो खो गया तो हमें ये एहसास ही नहीं रहा कि इस कुरान में लिखा क्या है और ये करने को कहता क्या है और इसको कब पढ़ा जाता है और कब शर्म और हया से इसको खोला भी नहीं जा सकता। सिनेमा की इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही हो और उससे पहले आप तिलावत कुरान कराएं, कहां की इंसानियत है ये? जब इंसान अंधा, गूंगा, बहरा होकर इस कुरान को पढ़ता है तो फिर इसी तरह की हरकतों में इन्वॉल्व होता है। लक्स स्टाइल अवार्ड शुरू हो रहे होते हैं, और शुरू कैसे होते हैं और उसके बाद क्या होता है आप खुद जानते हैं सब। कुरान इसलिए आया था, बिल्कुल जैसे हम अपनी बेटियों को रुखसत करते हुए उनको कुरान के साए से गुजारते हैं, और उसी बेटी के भी पाँव के नीचे, हमारे भी पाँव के नीचे और पूरी महफिल के पाँव के नीचे कुरान के अहकाम होते हैं। हमने कुरान को सिर्फ बरकत की किताब समझ लिया, घोल कर पी जाओ, चीनी में डाल के पी जाओ, ज़ाफ़रान लगाकर लिख लो और फिर पी जाओ, बस ये रह गया हमारे माशरे में। तोहम परस्ती, बैड ओमन्स, सुपरस्टिशियस स्टफ, इसी में इन्वॉल्व हो गए, और वजह मैंने कल बता दी थी हम क्यों इन्वॉल्व हो गए। इसका काम कुरान का लेवल था हिदायत के लिए। अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम से कहा था, जब भी मेरी तरफ से हिदायत आए जो उस हिदायत को थामेगा, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर कोई खौफ नहीं होगा और वो कभी गमजदा नहीं होंगे। दैट वॉज द इंटरनल पार्ट ऑफ योर लाइफ। फिजिकली आप तकलीफ में हो सकते हैं, दैट्स द पार्ट एंड द माइंड सेट ऑफ द बिलीवर। अल्लाह ने यह नहीं कहा था कि जो कुरान को तदब्बुर करके, फहम हासिल करके अमलन थाम लेगा, अब उसकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, अब उसे कभी कोई हर्ट नहीं करेगा, अब उसकी आंख में कभी कोई आंसू नहीं आएगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून इज द इंटरनल माइंड सेट, इट्स योर इंटरनल डिस्पोजिशन। बाहर तकलीफ आएगी, बाहर आप हर्ट होंगी, फिजिकली चोट लगेगी, फिजिकली कोई ट्रॉमा आएगा, कोई मिसहैप हो जाएगा, बट आपका इंटरनल कॉन्शियस आपको अल्लाह से कनेक्टेड रखेगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन का हर मामला अजीब होता है, मुश्किल आती है, सबर करता है, अजर पाता है, नेकी नेमत मिलती है, शुक्र करता है, अजर पाता है। इंटरनल माइंडसेट सेम रहता है उसका। वो अपनी बुराई जो उसके सामने जिंदगी में आती है, जो एक्सीडेंट आता है, जो क्लैमिटी आती है, जो कोई इस तरह का वाकया आता है जो अनप्लेजेंट होता है, वो उसमें से भी खैर निकाल लेता है। इसलिए कि उसने कुरान में फहम हासिल किया है, क्या पता कोई चीज तुम्हें बुरी लगे मगर उसमें तुम्हारे लिए खैर हो, एंड वाइस वर्सा, क्या पता कोई चीज तुम्हें अच्छी लग रही है अगर अल्लाह नहीं दे रहा उसमें तुम्हारे लिए खैर है। कुरान इसलिए आया था, माइंडसेट बदलने के लिए, जिंदगी का मकसद देने के लिए, जिंदगी को हिदायत के रास्ते पर चलाने के लिए। हमने इसको बरकत के लिए सिर्फ बना लिया, हमने इसको दीवारों पर हैंग करने के लिए सिर्फ बना लिया। अगर आपके घर में दीवार पर कोई भी चीज, कोई भी कलाम अल्लाह का, आयत, तस्बीह, जिक्र हैंग है, सो उसका तकाजा है कि आपकी जब उस पर नजर पड़े आप उस फ्रेज को पूरा पढ़ें। स्कॉलर्स कहते हैं अगर दीवार पर हैंग की है तो फिर आप पढ़ें उसको हर दफा, ताकि दैट विल बिकम अ रिमाइंडर। कुरान दीवारों की जीनत बनने नहीं आया था, कुरान कहाँ की जीनत बनने आया था, कुरान दिलों की जीनत बनने आया था। प्लीज, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप नजीहा के घर पे दीवारों पे लगी हुई कैलीग्राफी को देख देख के सोचें अच्छा नजीहा पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती। हर इंसान अपनी जात में खुद अल्लाह के सामने मुकल्लफ है, अपनी फिक्र करें, अपने घरों में जब भी लगाएं। हम बाज औकात अपने घरों के बाहर बड़ा बड़ा लिख कर लगा लेते हैं, जब नया घर बनता है, फाबी आई आला ई रब्बी कुमा तो कज़िबान, और फिर उसी घर की जब हम पार्टी थ्रो करते हैं, वेलकम पार्टी थ्रो करते हैं, तो फिर उसके अंदर शराब सर्व हो रही होती है। फाबी आई ये आला ई रब्बी कुमा तो कज़िबान पर लाइट्स लगी हुई हैं और बाग में खड़े हुए सब लोगों को नजर आ रही है। उसी के अंदर म्यूजिक भी चल रहा है, मिक्स गैदरिंग भी हो रही है, और क्या क्या कुछ तकियादार गजलदार महफिलों में नहीं होता। और घर के ऊपर सामने बड़ा बड़ा लिखा है फाबी आई आला ई रब्बी कुमा तो कज़िबान, क्या हम अल्लाह के गजब को दावत नहीं देते? सोचने की बात है। कुरान बरकत की किताब सिर्फ नहीं था। जी शाह जी बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियों का शिकार हैं, लेकिन अगर आप अपने पिछले 10 साल से लेकर आज तक के टाइम पीरियड को थोड़ा सा इवैल्यूएट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। यकीनन जहाँ बुराई बहुत तेज़ी से फैली है वहाँ अल्लाह का कलाम भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए कि देखें, वी आर टूवर्ड्स एंड ऑफ टाइम, इनफैक्ट वी आर इन एंड ऑफ टाइम्स, वी आर इन द टाइम ऑफ फतन, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज के मुताबिक ये बिल्कुल आखिरी एज है इस वक्त दुनिया का। पता नहीं आप और मैं इस दुनिया में कब तक मौजूद हैं, क़यामत कब आएगी, वल्लाहु आलम, अपनी ज़िंदगी मौत का हमें नहीं पता है। इस वक्त इस दीन को एक पुश की ज़रूरत है, ये गिरती हुई उम्मत हिल रही है, हिल रही है जो गिरी हुई थी, और ये खड़े होने की तरफ है। जब आप बच्चे को खड़ा करना शुरू करते हैं उसकी क्रॉलिंग के बाद, तो आप उसको हाथ देते हैं। इस वक्त जितनी तेजी से बुराइयां फैल रही हैं उतनी तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का इल्म भी आम हो रहा है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक और मुझे बहुत इसके बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला ने हमें हमारी जिंदगी में वो फल जरूर दिखाने हैं इंशाल्लाह। बस इस वक्त सिर्फ हर एक को अपने घर में बारिश का पहला कतरा बनने की जरूरत है। अपने दीन की इंफॉर्मेशन को अमल में कन्वर्ट कीजिए, अपने दीन के इल्म को अमल में ढालिए। मेरा इल्म जो है वो सिर्फ किताबी इल्म और इन्फॉर्मेशन ना रह जाए। याद रखें, जो स्टैग्नेंट पानी होता है चाहे वो मीठा हो, आप बाल्टी में मीठा पानी डिस्पेंसर का निकाल के छोड़कर डाल दें और 10 दिन तक डाले रखें, उसमें भी बैक्टीरिया डेवलप हो जाएगा, आप उसको पी नहीं सकते फिर। अगर इल्म फ्लो में नहीं आएगा, अगर इल्म अमल के फ्लो में नहीं आएगा, इल्म स्टैग्नेंट हो जाता है, और जब इल्म स्टैग्नेंट होता है तो बदबूदार हो जाता है, और यही बदबूदार इल्म एक मुतकब्बिर पर्सनैलिटी को माशरे का हिस्सा बनाता है। तो जितना कर सकते हैं कुरान के इल्म को हासिल करने का अमल, उसको बढ़ाइए, और फिर उस इल्म को अपने अमल में कन्वर्ट करने की तरफ आगे से आगे बढ़ते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस उम्मत को दोबारा खड़ा करेगा। इस रजुल की आपको बिल्कुल बिल्कुल सही, अच्छा याद कराया आपने। वो जो हमने पहले दिन बात की थी कि हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए कि हमारा आबिद वाला स्टेटस हमें अब्द की तरफ लेकर जाए, ये अब्द वाला स्टेटस आपको कांस्टेंट कॉन्शियस रखता है और आप अपनी जिंदगी के हर अमल में अल्लाह की नाफरमानी से बचते हैं। तो इस रजुल का भी आपको यहाँ यही तरीका कार मिल रहा है, इसने समझा اور اس کو فوراً عمل میں کنورٹ کیا، اور عمل میں کنورٹ کر کے فوراً لوگوں کو اپنے راستے کی طرف لانے کی کوشش شروع کر دی، اور اس کوشش میں اس نے لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کیا. مشرک قوم تھی، گناہگار قوم تھی، رسولوں کا مذاق اڑانے والی قوم تھی. یہ شخص جانتا تھا کہ انہوں نے پارٹنرز ایسوسیٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن اس نے جس انداز میں تبلیغ کی وہ انداز آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس نے پہلے اپنے آپ کو رکھا. اور یہ انداز ہمیں آج کے وقت میں تبلیغ کرنے کے بہت سی حکمتیں سکھا رہا ہے. اس نے کہا میں کیوں ایسے الہ کی عبادت نہ کروں، ایسی ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اس نے بات اس سے نہیں شروع کی، کیوں آپ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ کہہ کے نہیں شروع کیا. اس میں آپ کی اور میرے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے بچے جو باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، یا ہمارے بچے جو پاکستان میں بھی الحمدللہ ہیں اور جن کو اس طرح کے مائنڈ سیٹ سے کانسٹنٹ جو ہے وہ انٹریکشن ہوتا ہے، جب بچوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایتھیزم کو اسلام سپورٹ کیوں نہیں کرتا، سو بجائے اس کے کہ آپ دلائل دینا شروع کریں کہ ایتھیزم میں کیا پرابلم ہے، جسٹ ٹرن دا ٹیبل. آپ یہ بتائیں آپ ایتھیزم پر بلیف کیوں نہیں کرتے ہیں؟ واٹس دا پوائنٹ کہ آپ ایتھیزم کو صحیح نہیں سمجھ سکتے؟ واٹس دا پوائنٹ کہ آپ ہوموسیکشوالٹی کی فیور میں نہیں بول سکتے؟ واٹس دا پوائنٹ کہ آپ اس وقت لوگوں کی جو مکس گیدرنگ یا جو فیشن میں جو ہے وہ بہت زیادہ نیوڈیٹی کی طرف جانا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں صحیح سمجھتے؟ آپ اپنی ذات سے بات شروع کریں. اپنی ذات سے بات شروع کریں گی تو پیچھے آیت میں آپ پڑھ کر آئی ہیں، آپ اپنی رائے سے بات نہیں کریں گی، آپ کس سے بات کریں گی؟ اتباع المرسلین. آپ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں بات کریں گی. لیکن جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی ذات، اپنے پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی غلطیوں کو ایک طرف کر دیں اور آپ لوگوں کو بتائیں میں یہ کیوں سمجھتی ہوں، میں کیوں سمجھتی ہوں اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، میں کیوں سمجھتی ہوں یا قرآن کیوں بتاتا ہے کہ اب اسلام کی بیسس پر ہی سیلویشن ہوگی، اسلام کیوں کہتا ہے کہ مرتے ہوئے کافر کو بھی کلمہ پڑھا دو، اس کا فائدہ کیا ہوگا. یہ جب آپ اس طرح سے بات کرتے ہیں اور سامنے والا چاہے آپ کی بات نہ سنیں، دیکھیں جس کے سامنے صد ہے اور جس کے پیچھے صد ہے اور جس کے گلے کے اندر، جس کے گردن کے اندر کالر پڑا ہوا ہے، سنے گا تو وہ نہیں، ریئر کیس ہوگا جو سن لے گا، 90% نہیں سنے گا. جب وہ سنے گا نہیں تو آپ کوئی بھی دلیل دیں گی وہ مانے گا تو نہیں نا، آپ کتنی ریشنل دلیل لے کر آ جائیں وہ نہیں مانے گا. ایسے میں جب آپ تبلیغ کا انداز یہ اپنائیں گی کہ آپ اپنا کتھارسس بھی کر رہی ہوں گی، اپنے آپ کو بھی اسٹرانگ کنوکشن پر لا رہی ہوں گی، میں کیوں اسلام کو ٹھیک سمجھتی ہوں، میں کیوں ہوموسیکشوالٹی کی فیور میں نہیں ہوں، میں کیوں گے اور لیسبین لاس اور لیجسلیشنز کے خلاف ہوں، اس میں کیا ہوگا کہ سامنے والا آپ کی بات نہیں مانے گا تو آپ جٹری نہیں ہوں گے، آپ کو غصہ نہیں آئے گا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے نہیں مانا تو نہیں مانا، میں تو اپنی بات بتا رہی تھی، میں اب بھی ایسے ہی ہوں. سو یہ تبلیغ کا انداز ہے جس کو آپ کو سامنے کے لوگوں کو دیکھ کر اپنانا ہوگا. آگے اس آیت میں اس شخص نے کیا کہا تھا، اِن یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اور اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا، اس نے کون سا لفظ استعمال کیا، الرحمن کا لفظ استعمال کیا، کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو بت مجھے ریسکیو نہیں کر سکتے، لا ملجا الا اللہ، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ. مگر آپ سوچیں اس نے الرحمن کا لفظ کیوں استعمال کیا، اگر الجبار مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی مجھے نہیں بچا سکتا، اگر القہار مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی مجھے نہیں بچا سکتا، پیچھے اللہ کی اتھارٹی کا کون سا نام ہم کانسٹنٹلی پڑھ رہے ہیں، العزیز، اگر العزیز عزا والا مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. اس نے ان میں سے کوئی نام نہیں سلیکٹ کیا، اس نے اللہ کا نام سلیکٹ کیا الرحمن. الرحمن اور نقصان کمپلیمنٹ نہیں کرتے، یاد ہے ہم نے بات کی تھی الرحمن میں دو ایموشنز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، کون کون سا، محبہ اور رحمہ، اور محبہ اور رحمہ کے ساتھ ایک نقصان کا ایلیمنٹ سمجھ نہیں آتا. تو یہ رجل اپنی قوم کو کیا بتانا چاہ رہا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ وہی قوم تھی جس نے پیچھے ہم آیات پڑھ چکے انبیاء اور رسولوں کا مذاق اڑایا تھا اسی اللہ کے نام کو استعمال کر کے، ما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی چیز نہیں پیدا کی، رحمان اتنی سخت شریعت نہیں دے سکتا، رحمان بات بات پر جو ہے وہ سزا کی بات نہیں کر سکتا، وہ تو رحمان ہے. اس رجل نے انہی کی سارکیسٹک الفاظ کی آیت کے جواب میں اللہ کا نام الرحمن لا کر ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس کو تم رحمان کے نام سے جانتے ہو اس کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا. रहमान भी नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई नहीं बचा सकता। क्या हम मुसलमान अल्लाह की शान रहीमी का धोखा खाते हैं? बहुत खाते हैं। रिश्वत और सूद से कमाया हुआ माल, किसी का हक मारकर कमाया हुआ माल, और फिर उससे हज और उमरे करते हैं, और फिर काबे का पर्दा और गिलाफ पकड़ पकड़ के कहते हैं अल्लाह माफ कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम मौजूद है कि अल्लाह कैसे उस शख्स की दुआ कबूल करे जो सफर करके आया, जिसके बाल खाक आलूद हैं, जो अहराम की हालत में है और गिलाफे काबा को पकड़ कर दुआ करता है, लेकिन अल्लाह कैसे उसकी दुआ कबूल करे, इसलिए कि जो उसने कपड़ा पहना वो हराम का, जो उसने पेट में खाना खाया वो हराम का, जिस सवारी पर आया वो हराम का। हम क्या समझते हैं अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है? अल्लाह की शान रहीमी से हम धोखा नहीं खाते? कितना औरतों को समझा लो कि मोटे दुपट्टे में नमाज पढ़ी जाती, जो दुपट्टा मैंने पहना हुआ इसमें मेरी नमाज नहीं होगी। नमाज क्यों नहीं होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा हजरत आयशा की सही हदीस मौजूद है, औरत की नमाज मोटे कपड़े में होती है। आपका नमाज का एक अलग कपड़ा होना चाहिए। मैं इस कपड़े में, इस दुपट्टे में नमाज नहीं पढ़ सकती हूँ, नमाज नहीं होगी। फिर अगर मेरी स्लीव्स यहां तक चढ़ी हुई है और मेरी रिस्ट खुली हुई है, मेरी नमाज नहीं होगी। मेरी नमाज के लिए मेरा सतर पूरा कवर होना, कवर होने का मतलब रैप होना नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रैप होना और कवर होना। रैप वाला नहीं, म्यूजिक वाला रैप नहीं, डब्ल्यू वाला रैप। एक होता है मैं इस घड़ी के गिर्द एक चीज रैप कर दूं ऐसे करके, और मैंने इसको बिल्कुल टाइट कर दिया, अब ये रैप है, सही, ये रैप है। और अगर मैंने इसको बस ऐसे कर दिया, अब कवर है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू रैप समथिंग एंड टू कवर समथिंग। जब औरत को नमाज पढ़नी होती है तो उसको अपने आप को रैप नहीं करना होता, उसको अपने आप को कवर करना होता है। सो बराए मेहरबानी, अगर आप स्किनी जीन्स पहनती हैं, या अगर आप टाइट लेगिंग्स पहनती हैं, या अगर आप ऐसा चूड़ीदार पजामा पहनती हैं जिसको उतारने के लिए आपको कुश्ती लड़नी पड़ती है, तो प्लीज उसके अंदर नमाज नहीं होती है। या तो फिर अपना कोई स्कर्ट बनाइए, अबाया बनाइए, जिसको आप नमाज के टाइम पर पहन लें। अव्वल तो प्लीज वो पहने भी नहीं। इतना दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह हम सब की बच्चियों को हिदायत दे। वो लिबास जो हमारे जिस्म की एक एक साख्त को वाजे कर दे, वो लिबास आप घर में भी नहीं पहन सकते। बेटी बाप के सामने पहन सकती है? नहीं पहन सकती है। कैसे पहन सकती है? इनफैक्ट औरत औरत के सामने नहीं पहन सकती। इतने बड़े बड़े चाक पहन लेते हैं हम, और फिर हमारे ऊपर तक स्लिट्स होते हैं, और वो हमें थाइज अपनी फुल टाइट लेगिंग्स पहने हुए होते हैं। औरत को औरत के सामने सतर क्या है? नेवल टू नी, नाफ से लेकर घुटनों तक। या आप किसी औरत के सामने भी नहीं खोल सकते अंटिल अनलेस कि आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं या डॉक्टर के पास जा रही हैं। और हमारे यहाँ कितना कॉमन है अंडर लेग्स वैक्सिंग करवाना। इट्स हराम, फॉरबिडन, नॉट अलाउड। नमाज के लिए मोटी चादर इस्तेमाल कीजिए। नमाज के लिए ऐसी चादर इस्तेमाल कीजिए कि जिसमें आप सर से पांव तक कवर हो जाएं, अगर आपने ढीला लिबास नहीं पहना हुआ है। कोई अबाया रख लीजिए अपना, कोई स्कर्ट बना लीजिए अपना, इस चीज का एहसास कीजिए। ये तो मैं लिबास की बात कर रही हूं। औरतों ने नेल पॉलिश लगाई होती है और कई कई दिन से लगाई हुई होती है। अब तो जब से ये अल्लाह हम पर अपना रहम करे, ये जब से कौन से वाले नेल्स आए हैं, ऑर्गेनिक नेल्स हैं, ऑर्गेनिक कलर्स आए हैं कुछ। जब आप अपना ऐसा मैनिक्योर करवाते हैं, जब आप जाते हैं सैलून्स के अंदर और अपने नेल्स के ऊपर पता नहीं कौन सा नेल आर्ट बनवा कर आते हैं जो 15-20 दिन तक पानी में हाथ जाने से भी नहीं उतरता, उसी के साथ आप नमाज पढ़ रही हैं, क्यों दीन का मजाक बना रहे हैं? कौन सी अल्लाह की शान रहीमी के इंतजार में बैठे हुए हैं? अल्लाह ने कहा है वुजू नहीं होगा अगर आपके नेल के ऊपर कोई स्किन होगी। हमने इक्वलेंट कर लिया दीन में। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम रसूलों का इत्तेबा नहीं करते तो ये होता है। औरतों को समझाओ तो औरतें कहती हैं मोजों पर भी तो मसा कर सकते हैं, मैंने नाखूनों पर मसा कर लिया। दिस इज एडिशन इन द दीन। अल्लाह के रसूल ने सिखाया कि अपने नाखूनों का मसा कर लेना, जिस चीज, ये बिल्कुल वही चीज है जिसका हमने जिक्र किया था। किसी भी मजार पर जाकर किसी सीमेंट के सामने उसको बोसा देंगे तो शिर्क, हरम में जाकर हजरे अस्वद को बोसा देंगे तो ऐन इबादत। मोजों पर मसा करने का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, अलाउड। नेल्स के ऊपर नेल पॉलिश लगाकर मसा करने का नहीं बताया, नॉट अलाउड। मत आए इन धोखों में, ये पेनिट्रेटेड है, ये ऑक्सीजनेटेड है, इसमें से पानी पेनिट्रेट कर जाता है। आपने ट्राई करके देखा है? मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए सारी कौमें मौजूद हैं। या तो पहले प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, कोई ऐसी नेल पॉलिश अब तक यहां तक नहीं पहुंची पाकिस्तान में जिसको बड़े बड़े क्लेम करके कहा गया कि इसमें से पानी पेनिट्रेट हो जाता है। सीधा सा इलाज है, करके देख लीजिए। मैंने तो चार को करके देखा, किसी में से भी नहीं गया। बटर पेपर के ऊपर नेल पॉलिश लगाइए और ऊपर पानी डालिए, अगर पानी नीचे बह जाता है तो नेल पॉलिश पेनिट्रेटिंग है, नहीं बहता तो नेल पॉलिश इज नॉट ऑक्सीजनेटेड, पानी नहीं बहेगा उसके अंदर से और नहीं बहता है। क्यों अपनी इबादत जाया करते हैं? आमिला तो नासिबा, अमल करने वाले और थकने वाले, नमाज पढ़ी भी और सर से ऊपर उठी नहीं, तो फायदा? मत धोखे में आए, ये दुनिया मता उल गुरूर है, धोखे का सामान है। पहचाने, अल्लाह ने मुझे और आपको एक बहुत आला मकसद से पैदा किया है, बहुत आला मकसद से। किसी को बहुत शौक है नेल पॉलिश लगाने का, एक वुजू करके नेल पॉलिश लगाइए, दूसरे वुजू से पहले उतारिए, अपना वुजू कीजिए, नमाज पढ़िए, फिर लगा लीजिए। करते रहे सारा दिन यही काम, बड़ी फारे गए आप। बारह लगा, किसी को शौक है तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज अपनी नमाज जाया मत कीजिए। अगर आपको शौक है तो कीजिए। एक टाइम पे मुझे भी ये शौक था, मैंने बहुत किया है। इतना ही शौक था मुझे कि मैं हर नमाज से पहले नेल पॉलिश और रिमूवर से उतारा। उस वक्त तो पील ऑफ नहीं आती थी, अब तो पील ऑफ आ गई है, तो आप पील ऑफ उतार दीजिए, वुजू कीजिए दोबारा, फिर लगा लीजिए अगर आपको बहुत शौक है। मगर आपका वक्त याद रखिएगा, अल्लाह के यहाँ हिसाब के काबिल है। अल्लाह पूछेगा कहाँ वक्त लगाया आप? कहें अल्लाह पांच वक्त नमाज पढ़ती थी और पांच मरतबा नेल पॉलिश लगाती थी और उतारती थी। अल्लाह की शान रहीमी का धोखा मत खाएं, प्लीज। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको गुनाहों में इन्वॉल्व होने के लिए अपने शान रहीमी को सामने नहीं रखा। अल्लाह ने कुरान में रहमान का लफ्ज बड़ी उन सख्त टफ आयात के साथ रखा है जहां अल्लाह का गजब नाजिल होता है। जब ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के बेटे हैं, वहां रहमान का लफ्ज आया है कि रहमान अगर चाहे तो आसमान फट ना जाए और जमीन शक ना हो जाए। तो अल्लाह की शान रहीमी से नुकसान अपना इंसान ना उठाए, नाजायज फायदा ना उठाए। अल्लाह जहां अर रहमान है, सूरह फातिहा में अल्लाह का इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। किसी को अकीदा अस्माओ सिफात नहीं भी आता, सूरह फातिहा की पहली तीन आयात अकीदा अस्माओ सिफात में काफी हैं। अल्लाह का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब, द अल्टीमेट अथॉरिटी, द डिवाइन रियालिटी, अर रहमान रहीम, बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बट साथ साथ जस्टिस में सबसे आगे, मालिकी यौमिद्दीन, कंप्लीट अदल करने वाला। तो उसकी शान रहीमी आपको और मुझे उसके इंसाफ से दूर ना कर दे। आगे आयत नंबर 24 में फरमाया, इसी शख्स ने इन्नी इदन लफी दलाल मुबीन, अगर मैंने अल्लाह के साथ इलाह बना लिए, सपोर्टर्स बना लिए, तो मैं तो सिवियर कंफ्यूजन का शिकार हो जाऊंगा। आप देखें, इसको मालूम था ये मुशरिक कौम से बात कर रहा है, इसको मालूम था मुशरिक कौम ने अपने अल्लाह के साथ पार्टनर्स एसोसिएट किए हुए, इसको मालूम था ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, लेकिन इसने अपने ऊपर बात रख के कही इन्नी इदन, अगर मैंने ये किया, ये इदन जो है इसमें कंडीशन है, इन्नी इदन, अगर मैंने रहमान के साथ और इलाह कंसिडर किए तो मैं एक खुली कंफ्यूजन का शिकार हो जाऊंगा, यानी मैं भटक जाऊंगा। और इसने अपनी कौम को ऑफेंड किए बगैर उनको तौहीद की दावत दे दी। यही चीज आपको यहां मेंशन की भी मिल रही है आगे आयत नंबर 25 में। आगे इसने कहा इन्नी, यकीनन मैं, आमंतु, ईमान लाया मैं, बी रब्बिकुम, तुम सबके रब पर। मैं ईमान लाया किसके रब पर? तुम सबके रब पर। फस्माउनी, तो तुम लोग मेरी बात को गौर से सुनो। दो मरतबा पहले इसने बोला मैं, इन्नी यकीनन मैं, आमंतु ईमान लाया मैं। अरबी में इसको कहते हैं, जब आप एक ही इस तरह से यूं समझ लीजिए प्रोनाउन को, जमीर को या फाइल को एक साथ कंजेगेटिव देखते हैं, अल इसबातु अला गैरि फाइल। आप में से जो ग्रामर लिखने वाले हैं वो शायद इसका फायदा उठा लेंगे। यानी तौकीद के लिए इसको लाया जाता है, किसी बात में स्टेडफास्टनेस शो करने के लिए लाया जाता है। अल इसबात, किसी बात को साबित करने के लिए इस बात को लाया जाता है जब एक ही फाइल दो मरतबा आता है। इसने पहले कहा था, आप देखें कांस्टेंट अब तक पीछे आयत में कह रहा था, तबलीग कर रहा था, मैं वमाली अना आबुदू, वमाली और मुझे क्या है, ला आबुदू, मैं इबादत ना करूं, फतरानी उसने मुझे पैदा किया, युरिदनी अगर मेरे साथ इरादा करे, ला तुगनी अन्नी مجھے جو ہے وہ کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا. انی اذن لفی دلال مبین, میں نقصان میں چلا جاؤں گا. انی آمنتو, میں ایمان لایا. اور اب آ کے کہہ رہا ہے میں ایمان لایا بی ربکم, تمہارے رب پر. یعنی ان کو اپنی دعوت کا حصہ بنا لیا, اس لیے کہ یہ دعوت کا انداز ہے, یہ جدل کا انداز نہیں ہے. جدل کیا ہوتا ہے؟ جدال, ڈائیلاگ کیے جاتے ہیں جب نان مسلمز کے ساتھ. جدال کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے. آپ اور میں کوئی بھی ایسی کمپیریٹو ریلیجن سٹڈی میں آگے نہیں ہے کہ آپ اور میں کسی نان مسلم کے ساتھ جدال کی کیٹیگری میں آئیں. آپ اور میں کانسٹنٹ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنا انداز ہمیشہ ہمدردی والا, محبت والا, اور ایک دوسرے کے ساتھ افیلیشن والا رکھیں. کبھی کمپٹیشن نہ آئے, کوئی کمپٹیشن نہیں آئے. اور آپ نے دیکھیں اس نے آخر میں کیا کہا آیت کے, فاسمعونی, ابھی تک کہہ رہا تھا اتبع المرسلون. کس کو فالو کرو؟ اتبع المرسلین, مرسلین کو فالو کرو. اب کہہ رہا ہے فاسمعونی, میری بات سنو. یعنی دین کے راستے پر چلنے والے کمپٹیشن میں نہیں ہوتے. اور یہ انبیاء کی دعوت تھی, انبیاء کی اس کو سپورٹ تھی کہ اس نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ دعوت کا کام جو ہے ہم سب ایک ہی پیس پر کر رہے ہیں. اور آپ کو اور مجھے بھی اپنے اس معاشرے میں الحمدللہ یہاں بہت سے چہرے ایسے ہیں جو دعوت کے کام میں ٹیم ورک کے ساتھ انوالو ہیں. محبت کے ساتھ دین کا کام کیجئے. اور اگر آپ کسی بھی ٹیم کے ساتھ انوالو نہیں ہیں, سو ہر دین کا پھیلانے والا ادارہ اور ہر دین کا دائی, ہر دین کا اسکالر, اس کے لیے میرے دل میں عزت, احترام اور محبت ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھا کریں, ہر دین کا پہنچانے والا جو اسکالر ہے, میں اسکالر کی بات کر رہی ہوں, جو اسکالر ہے, جو دائی ہے, اور جو حقیقتاً اپنے کردار اور اپنے قول میں تضاد نہیں رکھتا, انسانی حد تک کوئی کمزوری ہے, ایسے انسان کے لیے اپنے لیے ایک اصول رکھیں, اس کو انسان سمجھیں. یہ مت سمجھیں اتنے ہائی پیڈسٹل پڑے کہ گناہ نہیں کر سکتا, غلط بات نہیں بول سکتا. وہ انسان ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے. سب کا عزت, سب کا احترام کریں, جیسے یہ ریلیشن شپ یہاں پر سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ چیز سکھا رہے ہیں اس شخص کے ذریعے کہ ہم دین میں آگے بڑھنے والے محبت احترام کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے. اختلاف ہونا اور پھر ایک دوسرے کو برداشت کرنا اس دین کی خوبصورتی ہے. آپ کو صحابہ میں اختلاف نظر آتا ہے, لیکن وہ لڑتے نہیں تھے ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگاتے تھے, ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑ لیا کرتے تھے. اسی چیز کو اپنے اندر لے کر آئیں. نہ اپنے دین کے کام کو ورلڈلی گین کے لیے کرنا ہے, نہ انسانوں سے کمپنسیشن لینے کے لیے کرنا ہے, نہ کوئی ہمیں دنیا کا ریوارڈ اور سیلری چاہیے, نہ ہمیں کوئی نمبر کاؤنٹ آڈینس کا چاہیے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے دل میں اتر جائے. اور الحمدللہ ایک نے بھی سنا اور اس کے دل پر اثر ہو گیا, تو انشاءاللہ اس کا اجر, اس کا ریوارڈ قبر تک ہمارے ساتھ چلے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونافعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.